आज की बात। श्रोताओं, कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद अब्बास। भारत के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और परिणाम भी आ गए, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के दौरान एक बात बहुत साफ तौर पर दिखाई दी कि मीडिया का ध्यान मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश पर केंद्रित रहा और इसके बाद पंजाब पर ध्यान दिया गया। उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा बहुत हद तक उपेक्षित रहे। चुनाव ही नहीं बल्कि वहाँ की अन्य घटनाएं भी बहुत कम ही ध्यान का केंद्र बनी। इस पर कुछ हलकों ने चिंता भी जताई। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। कुछ टीकाकारों का यहाँ तक कहना है कि मीडिया कवरेज का 70% भाग उत्तर प्रदेश और 25% पंजाब को समर्पित रहा। उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर मुख्य धारा की राजनीति और मीडिया से लगभग गायब रहे। चुनाव हो जाने के बाद भी सरकार गठन का विषय इसी रूप में दिखाई दिया। उत्तर प्रदेश में सरकार गठन मीडिया में अधिक महत्वपूर्ण ढंग से पेश किया जा रहा है। इतना ही नहीं, भारत के वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ इस बात पर अपनी गहरी चिंता जताते हैं। उनका कहना है कि हमें केवल मीडिया के माध्यम से भारत को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि मीडिया का अपना अलग भारत है।
हम भारत का मीडिया हैं, लेकिन हम भारत नहीं हैं। हमारे मीडिया के मुताबिक या हमारे मुताबिक भारत में सिर्फ वो राज्य हैं आजकल जहाँ चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। हमारे मुताबिक भारत में सिर्फ गिने चुने 4 या 5 नेता हैं। सबसे बड़ा नाम है शशिकला, उसके बाद आता है नरेंद्र मोदी, उसके बाद आता है अखिलेश यादव, फिर मायावती और फिर राहुल गांधी। ये मीडिया का भारत है। मणिपुर का जिक्र नहीं आता। मणिपुर का जिक्र ना सही, मणिपुर के साथ साथ जो नॉर्थ ईस्ट के दूसरे राज्य हैं वहाँ से 3 बड़ी बातें आई हैं, 3 बड़ी खबरें आई हैं, लेकिन उसका कोई जिक्र नहीं है हमारे भारत में। क्या नॉर्थ ईस्ट इतना दूर है?
वरिष्ठ पत्रकार संगीत बरुआ पिशारोती का बयान भी विनोद दुआ ने दिखाया, वो भी इस स्थिति से असंतुष्ट दिखाई देती हैं।
नेशनल मीडिया में मेरे सालों की एक्सपीरियंस से मैं कह सकती हूँ, दावे के साथ कह सकती हूँ कि इनकी जो न्यूज़ कवरेज की प्रक्रिया है उसमें नॉर्थ ईस्ट का प्रेजेंस ना के बराबर है। उदाहरण के रूप से आप देखिए, जैसे आपको हर मिनिस्ट्री के लिए एक कॉरेस्पॉन्डेंट मिल जाएंगे दिल्ली में, लेकिन एक मिनिस्ट्री है डोनर मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, जिसकी एक फुल फ्लेज मिनिस्टर है, लेकिन उसकी न्यूज़ कवर करने के लिए आपको कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं मिलेगी।
अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कालिखो पुल ने आत्महत्या कर ली और 60 पेज का विस्तृत सुसाइड नोट छोड़ा, जिसके हर पेज पर उन्होंने हस्ताक्षर किए ताकि उसकी विश्वसनीयता पर सवाल न उठे। इस नोट में उन्होंने राजनीति और न्यायपालिका में बहुत गहराई तक और बहुत व्यापक रूप से व्याप्त भ्रष्टाचार से पर्दा उठाया है। वरिष्ठ विचारक और लेखक योगेंद्र यादव ने अपने एक लेख में इस सुसाइड नोट को पेपर बम का नाम दिया, जो बड़ा धमाका कर सकता है, लेकिन इस बात की भी आशंका जताई कि इस मामले को दबा दिया जा सकता है। वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ इस मामले में भी नेशनल मीडिया के तौर तरीकों पर सवाल उठाते हैं।
अरुणाचल के एक मुख्यमंत्री रहे साहब कालिखो पुल ने आत्महत्या कर ली और 60 पेज का सुसाइड नोट भी छोड़ा, वो हमारे भारत में शामिल नहीं है। कल्पना कीजिए, जो बाकी राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, उत्तर भारत के किसी राज्य या बंगाल या महाराष्ट्र या आंध्रा या तमिलनाडु, अगर इन राज्यों के किसी पूर्व मुख्यमंत्री ने आत्महत्या की होती तो कितना बवाल मचा होता, कितना शोर मचा होता, मीडिया में कैसी जगह उसको मिलती। लेकिन क्योंकि नॉर्थ ईस्ट बहुत दूर है दिमागी तौर पर, इसलिए एक पूर्व मुख्यमंत्री ने आत्महत्या कर ली, 60 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें वो लिखते हैं उनकी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्त किया था, कालिखो पुल की सरकार को। तो कालिखो पुल लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले तक पहले एक सज्जन ने मेरे आदमियों से संपर्क कर मुझसे 49 करोड़ रुपए मांगे। एक और शख्स जो एक और सज्जन के भाई थे, उन्होंने मुझसे 37 करोड़ रुपये की मांग की। फिर उन्होंने कुछ नाम भी लिए हैं लोगों के। फिर ये लिखते हैं कि सन 2009 में राज्य को एडवांस 200 करोड़ रुपये का लोन देने पर दोरजी खांडू के कहने पर मैंने उस दौर के एक मंत्री को 6 करोड़ रुपए फलां पते पर दिए थे, पता दे रखा है। आखिर में आत्महत्या करने से पहले ही लिखते हैं, मैं पूछता हूं कि ये जनता कब जागेगी और कब इसे होश आएगा। कब तक जनता चुनावों में नेताओं की महंगी कारों को देखकर शराब व थोड़े से पैसे लेकर और उनके झूठे वादों को सच मानकर वोट देती रहेगी। सच तो यह है कि जनता खुद ही बेवकूफ बना रहना चाहती है और सच से दूर भागती है। जनता अपने आप तय करे कि उन्हें क्या करना है। मेरा काम तो जनता को सच बताना था, लेकिन फैसला जनता के ही हाथ में है।
मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों से आईएसआई के एजेंट गिरफ्तार किए गए। जो लोग पकड़े गए उनका संबंध सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े संगठनों से बताया गया। वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ का कहना है कि मीडिया ने इस मुद्दे को भी सही प्रकार से नहीं उठाया।
मध्य प्रदेश में मुख्तलिफ जगहों से और राजस्थान से भी आईएसआई के एजेंट्स गिरफ्तार किए गए हैं। ये वो लोग हैं जो आईएसआई के लिए खबरें इकट्ठा करते थे, सूचना इकट्ठी करते थे, फोटोएं लेते थे, एक प्राइवेट टेलीफोन एक्सचेंज चला रहे थे, उसके जरिए इनके हैंडलर से, आईएसआई के हैंडलर से इनकी बातचीत होती थी। लेकिन इस पर भी चुप्पी है हमारे भारत में। क्यों? क्योंकि जो लोग पकड़े गए हैं उनके नाम हैं ध्रुव सक्सेना। कहा जाता है कि बीजेपी आईटी सेल के सदस्य रहे हैं। हालांकि बीजेपी वाले अब इनसे इनकार करते हैं, दूरी बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन इंडिया टुडे नाम की मैगजीन ने जब फोटो छापी कि शिवराज सिंह चौहान के साथ ये भी खड़े हुए हैं, तो तब बवाल खड़ा होना शुरू हुआ और मीडिया में धीरे धीरे जगह कम होती गई। ध्रुव सक्सेना, सतविंदर सिंह, कुश पंडित, जितेंद्र ठाकुर, रितेश खुल्लर, जितेंद्र सिंह यादव, दादू, त्रिलोक सिंह, बलराम, ये वो लोग हैं जिन्हें पकड़ा गया है, जिन्हें पुलिस रिमांड पर भेजा गया। और इनमें से सबसे पहले पकड़े गए थे सतविंदर सिंह और दादू। ये सुचेतगढ़ में फौजी ठिकानों के फोटो ले रहे थे तभी पकड़े गए। इनसे तफ्तीश में ये तमाम नाम सामने आए। कल्पना कीजिए, इन सारे नामों में अगर एक भी मुसलमान नाम होता तो कितना बवाल मचता।
हालांकि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, जिसका काम बहुत महत्वपूर्ण है। विनोद दुआ मीडिया के दायित्वों की बात करते हैं।
एक जिंदा लोकशाही में, एक जीवंत लोकतंत्र में, एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में मीडिया की भूमिका क्या होती है? हमारी निगाहों में मीडिया की भूमिका ये है कि सबसे पहले सही जानकारी, सटीक जानकारी पाठक या दर्शक तक पहुंचाए और ये तय करे कि इस खबर को कितनी अहमियत देनी है। दूसरी जिम्मेदारी ये होती है कि उसका जो विश्लेषण होता है, उस पर अगर आप एडिटोरियल लिखना चाहें, संपादकीय लिखना चाहें, कोई पोजीशन लेना चाहें, उसके लिए कॉलम बने होते हैं। ये हमारे हिसाब से मीडिया की जिम्मेदारी बनती है एक लोकतंत्र में, ताकि लोकतंत्र के जो पाँव हैं वो और मजबूती से जम सकें हमारे जहन में, हमारे पूरे इलाके में। कुछ साल पहले अमेरिका में एक किताब छपी थी, उसका नाम था डिसाइडिंग व्हाट्स न्यूज़। यानी ये तय करना कि खबर क्या है घटनाओं पर नहीं है, ये उन लोगों पर है जिनका काम खबरें देना है, वो तय करेंगे कि खबर क्या है। उसमें ये बताया गया कि जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है, कोई सुनामी आ जाती है, भूकंप आ जाता है, तो वो सबसे बड़ी खबर बनती है, उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान जाता है। उसके बाद असैसिनेशन, किसी वीआईपी या पॉलिटिकल फिगर या सेलिब्रिटी की हत्या हो जाए, असैसिनेशन, जैसे महात्मा गांधी की हत्या हुई या जैसे राजीव गांधी की हत्या हुई, तो वो दूसरे नंबर की बड़ी खबर बनता है। उसके बाद सेक्स स्कैंडल, वो तीसरे नंबर की बड़ी खबर बनते हैं। चौथे नंबर की बड़ी खबर स्कैम बनती है। इस तरह से धीरे धीरे आप सिनेमा तक आते हैं, फिर बाकी और चीज़ों तक आते हैं। डिसाइडिंग व्हाट्स न्यूज़। अब इसमें सबसे बड़ा ख़तरा ये है कि जो लोग फैसला करते हैं कि खबर क्या हो, उनका विवेक क्या है, उनकी नीयत क्या है, उनका ज़मीर क्या कहता है, वो कितने ईमानदार हैं।
भारत के वरिष्ठ पत्रकार और उद्घोषक रविश कुमार का कहना है कि पत्रकारिता के इतिहास में कोई आदर्श दौर नहीं रहा, और वो भी वर्तमान समय में मीडिया के तौर तरीकों से बहुत नाराज दिखाई देते हैं।
आप टीवी क्यों देखते हैं? आप अखबार क्यों पढ़ते हैं? मतलब क्या जानकर कल से क्या बेहतर हो गए? चीजें तो वहीं पहुंच रही हैं कि आप अगर आज ये दंगा है तो 84 का भी दंगे की बात करो तो सब हर घटना की पृष्ठभूमि 20 साल पहले की तो है, तो इसमें इस बंटवारे में इज इक्वल टू में इससे हमारी जन्म हमारे और आपके भीतर का नजरिया क्या नया हो रहा है। तो हमारी जो भीतर की बेचैनियां हैं वो इसे मार दी जा रही हैं और मर गई हैं। हम सब बेचैन लोग अब नहीं हैं, आप सब भी एक ठहरे और एक तरह से ठहर चुके लोग हैं, लेकिन उन बेचैनियों को कुरेदने की जो लिखने की बात है, जो बोलने की बात है, वो अब लगभग समाप्त हो गई है। और वो इसलिए भी कि आप कोई भी टेलीविजन खोलिए वही आदमी है। मैं समझता मैं हैरान हूँ उस एंकर की क्षमता पे भी और उन चार प्रवक्ताओं के भी कि इतने जल्दी से ये भारत के सभी विषयों पर कैसे बोल लेते हैं और कैसे अंतिम सवाल पूछ लेते हैं। तो ये मैं बदल नहीं सकता, चूंकि गमे रोजगार की एक नियति है, वो आपके पास भी, वो मेरे पास भी, मैं कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैं आपको बहुत श्रद्धा की नज़र से नहीं देखता कि आप टीवी देखते हैं। मैं यही पूछता हूँ कि ये कौन लोग हैं जो टीवी देख रहे हैं और क्यों देख रहे हैं। मेरा तो एक कारण है कि मेरा तो रोजगार है, आपका क्या कारण है मुझे ये समझ में नहीं आया और इस बात से मैं पागल हुए जा रहा हूँ। तो पत्रकारिता जो है वो एक प्रदर्शन का विकल्प बनकर रह गई है।
बहरहाल मीडिया बहुत महत्वपूर्ण साधन और माध्यम है, इसकी उपयोगिता समाप्त नहीं होनी चाहिए। ये बिंदु महत्वपूर्ण है जिस पर सभी संबंधित वर्गों और पक्षों को ध्यान देने की जरूरत है।